वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है, और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं जहरा जैदी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। तो आइए पहले सूरह शुअरा की आयत क्रमांक 110 और 111 की तिलावत सुने।
तो ईश्वर से डरो और मेरा आज्ञा पालन करो। उन्होंने कहा, क्या हम आप पर ईमान ले आए जबकि तुच्छ लोग आपका अनुसरण कर रहे हैं?
इससे पहले कहा गया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी जाति के लोगों को पापों से दूर रहने और ईश्वर से डरने का निमंत्रण दिया और जीवन का सही मार्ग दिखाकर उनसे कहा कि वे ईश्वर का संदेश लाने वाले के रूप में उनके आदेशों का पालन करें। ये आयतें भी उनकी उसी बात से आरंभ होती हैं, किंतु विरोधियों ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि जो लोग आपके पास एकत्र हुए हैं वे दरिद्र और असहाय लोग हैं, उनके पास न धन है न कोई पद, ये लोग हमारे अधीन हैं और समाज में इनका कोई स्थान नहीं है, तो हम किस प्रकार उनकी पंक्ति में आकर आपके धर्म के अनुयायी बन सकते हैं?
वस्तुतः उन लोगों के निकट केवल नाम, पद, धन और ख्याति का ही मूल्य था, और चूंकि हजरत नूह के अनुयायियों में ये विशेषताएं नहीं थीं, इसलिए उनकी दृष्टि में उनका कोई महत्व नहीं था, जबकि ईश्वर और हजरत नूह की दृष्टि में मनुष्य का मूल्य उसकी पवित्रता और ईश्वरीय भय में है, जो धनवानों में कम और दरिद्रों में अधिक दिखाई पड़ता है।
इन आयतों से हमने सीखा कि धन व ख्याति के कारण घमंड भी पैदा हो सकता है, जिसके कारण मनुष्य स्वयं को श्रेष्ठ और कमजोर व गरीब लोगों को तुच्छ समझने लगता है।
सत्य का मानदंड स्वयं उसी में खोजना चाहिए, उन लोगों में नहीं जिन्होंने उसे स्वीकार किया है। सच्ची बात को इस बहाने से रद्द नहीं किया जाना चाहिए कि अमुक गुट उसका समर्थक है।
पैगंबरों के मत में सभी लोगों को एक दृष्टि से देखा जाता है और उनके बीच कोई भेदभाव नहीं रखा जाता।
आइए अब सूरह शुअरा की आयत क्रमांक 112 और 113 की तिलावत सुने।
قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ।
नूह ने कहा, मुझे क्या पता कि वे क्या करते रहे हैं, अगर वे समझते हैं तो उनका हिसाब केवल मेरे पालनहार के जिम्मे है।
विरोधियों के बहानों के मुकाबले में जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अनुयायियों को समाज के तुच्छ लोग बता रहे थे, हज़रत नूह ने कहा कि मेरा दायित्व समाज के सभी वर्गों को सत्य की ओर बुलाना और असत्य से दूर रहने का निमंत्रण देना है। ये बात मेरे अधिकार में नहीं है कि कौन सा गुट ईमान लाएगा और कौन सा गुट ईमान नहीं लाएगा। इसी प्रकार ये भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि वे लोग पहले कैसे थे और क्या करते थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब वे ईमान ले आए हैं।
यदि तुम लोग भी थोड़ा सा विचार कर लो तो समझ जाओगे कि उनके कामों का हिसाब किताब मेरे नहीं बल्कि ईश्वर के जिम्मे है। अतः अकारण उनके अतीत की बात मुझसे न करो और न इसे अपने विरोध का बहाना बनाओ। सैद्धांतिक रूप से हमारी धार्मिक संस्कृति में हमें इस बात का अधिकार नहीं है कि हम दूसरों की कमजोरियों की टोह में रहें और उन्हें लोगों की बातें बताते फिरें। हमारा दायित्व तो है के लोगों के विदित रूप और उनकी विदित बातों के आधार पर फैसला करें, और अगर कोई ईमान लाता है तो हमें अधिकार नहीं है कि उसके ईमान को स्वीकार न करें और इसके लिए उसके अतीत को बहाना बनाएं।
इन आयतों से हमने सीखा कि लोगों के अतीत और वर्तमान के बारे में पैगंबरों का ज्ञान ईश्वर की इच्छा के कारण है, और ऐसा नहीं है कि उनके पास स्वयं अपना कोई गुप्त ज्ञान हो।
लोगों के हिसाब किताब का दायित्व तो हमारा नहीं बल्कि ईश्वर का है, और हर कोई दूसरों के नहीं बल्कि अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है। हमें प्रलय में दूसरों के बारे में फैसला करने का अधिकार भी नहीं है।
آئیے اب سورہ شعراء کی آیت کرمانک 114 اور 115 کی تلاوت سنیں۔
وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین،
اور میں کدھا ایمان والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں تو بس اسپشٹ روپ سے ساودھان کرنے والا ہوں۔
حضرت نوح علیہ السلام کے ورودھیوں نے ایمان لانے کے لیے شرط رکھی کہ وہ ایک درد و کمزور ورگ کے لوگوں کو اپنے پاس سے دور کر دیں۔ البتہ یہ بھی بہانے سے ادھک کچھ نہیں تھا، کیونکہ یدی حضرت نوح ان کی یہ بات مان لیتے تو وہ کچھ اور بہانہ بنا لیتے اور پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ کنتو حضرت نوح نے ان کی اس انوچت مانگ کو کھل کر رد کر دیا اور کہا کہ میں لوگوں کے مارگ درشن اور انہیں ستیہ سے اوگت کرانے کے لیے آیا ہوں، میں دھن دولت اور کھیاتی پراپت کرنا نہیں چاہتا کہ دریدروں کو اپنے سے دور کر دوں اور دھنوانوں کو آکرشٹ کروں۔
روچک بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کے آدھار پر انیہ پیغمبروں کے سمے میں بھی دھنوان ان سے اسی پرکار کی انوچت مانگ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یدی آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں تو غریب و تچھ لوگوں کو اپنے پاس سے دور کیجیے، کنتو سبھی پیغمبروں نے اس پرکار کی غلط مانگوں کو نکار دیا۔ وے اپنے آپ کو سماج کے سبھی ورگوں کے مارگ درشن کے لیے اتردائی بتایا کرتے تھے۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ ورودھیوں کی انوچت مانگوں کے مقابلے میں کڑائی سے ڈٹ جانا چاہیے اور انہیں آکرشت کرنے کے لیے ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کرنا چاہیے۔
پیغمبروں کے مت میں دھن و سمپتی تتھا لوگوں کا ساماجک استھان مولیہ وان نہیں ہے، بلکہ واستوک مولیہ ایمان کا ہے۔